ऐशिका इस वक्त मिस्टर मित्तल के घर पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में वो फोटो थी जो काफी समय से गौतम मित्तल ऐशिका को दिखाना चाहते थे। उस फोटो में एक औरत थी जो काफी हद तक ऐशिका की तरह लग रही थी। बस आंखों का कलर और फोरहेड की शेप को छोड़ दिया जाए तो वही नाक, होंठ, चिन और बाल भी काफी हद तक एक जैसे ही लग रहे थे। उनके हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर भी लगभग सेम था। उस फोटो को देखने के बाद ऐशिका के दिल में ये उम्मीद जाग उठी कि शायद वो राधिका की बेटी हो सकती है। फिर भी बिना किसी कन्फर्मेशन के ऐशिका कोई झूठी उम्मीद नहीं रखना चाहती थी। ऐशिका ने गौतम मित्तल की तरफ देखा और अपने आंसू साफ करते हुए पूछा, ये औरत कौन है? ये मैडम मर्चेंट हो सकती है, देखो मुझे ठीक से याद नहीं है, गौतम ने जवाब दिया। मैडम मर्चेंट कौन है? ऐशिका ने पूछा। वो राधिका सिंघानिया की माँ है, गौतम ने बताया। ऐशिका को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने खुद को पिंच करके देखा, उसे दर्द महसूस हुआ तो लगा कि शायद गौतम मित्तल सच कह रहे हैं। बहुत बार उसने दिल ही दिल में यही कल्पना की थी कि शायद राधिका उसकी माँ निकले। ऐशिका ने गौतम की तरफ देखा और पूछा, लेकिन आप ये फोटो मुझे क्यों दिखा रहे हैं? नैना ऐशिका के पास आई और उसका कंधा सहलाकर कहा, ऐशिका तुम काफ़ी मैच्योर और समझदार बच्ची हो, क्या तुम्हें कभी भी डाउट नहीं हुआ कि मालविका तुम्हारी माँ नहीं है? देखो उसका बिहेवियर देखकर हम सबको यही लगता है कि वो औरत तुम्हारी माँ हो ही नहीं सकती। साफ दिखता है कि वो तुमसे नफरत करती है और आयशा से प्यार। नैना के कहने पर ऐशिका पुरानी बातें सोचने लगी। बहुत बार उसे शक हुआ था कि मालविका उसकी माँ नहीं है, लेकिन जब मालविका ने ऐशिका को बेचा था और उसे वापस लाया गया था तब सबूत के तौर पर मालविका और ऐशिका का डीएनए टेस्ट हुआ था। उस टेस्ट रिजल्ट में यही साबित हुआ था कि मालविका ही ऐशिका की माँ है, लेकिन ऐशिका को अभी भी कहीं ना कहीं लगता था कि वो डीएनए सैंपल मालविका का नहीं था। ऐशिका चुप थी, तभी नैना ने वापस कहा, क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम्हारी माँ राधिका सिंघानिया है? ये ख्याल भी ऐशिका के लिए काफ़ी था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो चाहकर भी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। काफ़ी मुश्किल से ऐशिका ने खुद को संभाला और फिर सख्त होकर कहा, देखिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के हम इस तरह जाकर कुछ भी दावा नहीं कर सकते हैं। गौतम ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसी सिचुएशन में अगर हम गलत साबित हुए तो बहुत बुरा हो सकता है। फिलहाल इस बात को जाने देते हैं, खाना खाते हैं और फिर रात के वक्त मैं और नैना जाकर राधिका सिंघानिया से बात करते हैं, वैसे भी वो हमारे पास में ही रहती है। ऐशिका से मानो इंतजार नहीं हो रहा था, उसने राघव की तरफ देखकर कहा, क्या आप मुझे इसका एक प्रिंट निकालकर दे सकते हैं? राघव ने सिर हिलाया और फिर तुरंत ऐशिका को फोटो का प्रिंट निकालकर दे दिया। ऐशिका ने फोटो पकड़ी और उनसे कहा, मुझे अभी बात करनी है, अगर बात नहीं करूंगी तो दिमाग में यही सब चलता रहेगा। ऐशिका ने उनके जवाब का इंतजार भी नहीं किया और जल्दी से वहां से जाने लगी। गौतम ने पीछे से कहा, लेकिन तुम कुछ खा तो लेती? मैंने पहले ही कहा था डिनर के बाद बात करेंगे, लेकिन आपसे इंतजार ही नहीं होता है, अब जल्दी से उसके साथ चलिए, जानते हैं ना वो फैमिली कैसी है, नैना ने उसे डांटते हुए कहा और ऐशिका के पीछे जाने लगी। गौतम भी उनके साथ जा रहे थे। कियारा भी जाना चाहती थी लेकिन राघव ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, तुम घर पर रहो, तुम अच्छे से जानती हो कि ये सब आसान नहीं रहने वाला है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस हो। ठीक है, फिर ऐशिका का ख्याल रखना, कोई उसे गलती से भी हर्ट ना करे, कियारा ने धीमी आवाज़ में कहा। राघव ने हामी भरी और फिर वहां से ऐशिका के साथ चला गया। वहीं ऐशिका सिंघानिया मेंशन के आगे पहुंच चुकी थी। आदर्श ने उसे आने से सख्त मना किया था, फिर भी ऐशिका ने खुद को मजबूत किया और अपने कदम सिंघानिया मेंशन के अंदर बढ़ा दिए थे। अंदर जाते वक्त ऐशिका की नज़र सिंघानिया मेंशन पर पड़ी। वो मालविका के साथ आउट हाउस में रहती थी। अगर राधिका सच में उसकी माँ निकली तो अब तक ऐशिका से उसका सब कुछ छीन लिया गया था। ऐशिका अंदर आई तो उसे देखते ही हाउस हेल्पर ने मुंह बनाया और हल्के गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर ने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। वो ऐशिका को आगे भी बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नज़र मिस्टर और मिसेस मित्तल पर पड़ी। साथ में राघव भी था तो वो कुछ कह नहीं पाई। नैना ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की और जल्दी से कहा, मिसेस सिंघानिया से कहिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। हाउस हेल्पर वहां से चली गई। मजबूरी में उसे उनका मैसेज राधिका तक पहुंचाना ही पड़ा, वरना अगर ऐशिका अकेली होती तो वो उसे वहीं से बाहर निकाल देती। ऐशिका वहां खड़ी उनके आने का इंतजार कर रही थी, तभी उन्हें बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। ऐशिका ने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो वो नक्श की गाड़ी थी, उसके साथ में आयशा और अरमान थे। अरमान वहां आने से पहले राधिका के लिए काफ़ी कुछ लेकर आया था। आयशा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए अरमान से कहा, मिस्टर सिंघानिया इन सब की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों ज़रूरत नहीं थी? तुम नहीं जानती, पर मेरे चाचू के लिए तुम्हारी माँ बहुत मायने रखती है। शायद वो एक दूसरे के दोस्त रहे होंगे और इस नाते मुझे खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगा। चिंता मत करो, मुझे पता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं उनके लिए हेल्दी स्टफ़ ही लेकर आया हूँ। अरमान ने कहा और फिर गार्ड को अपने साथ लाई गिफ्ट निकालने का इशारा किया। उसके बाद वो तीनों अंदर की तरफ आने लगे, लेकिन आते ही उनकी नजर सीधे इशिका पर गई और फिर उनके साथ में आए मिस्टर एंड मिसेस मित्तल पर। उनसे थोड़ा दूर राघव भी वहीं खड़ा था। आयशा जल्दी से इशिका के पास गई और गुस्से में बोली, इशिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभिमन्यु के वहां ना होने पर आयशा इशिका से काफी बदतमीजी से बात कर रही थी, यहाँ तक कि उसने उसे आंटी भी नहीं कहा था, जैसा कि अभिमन्यु ने उसे कहने को बोला था। इशिका ने आयशा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर से अपनी नजरें सामने की तरफ कर ली। उसकी इस हरकत पर नक्श चिरते हुए बोला, आयशा तुमसे कुछ पूछ रही हैं। इशिका तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो? राघव ने कियारा से वादा किया था कि वो इशिका के साथ वहां कुछ गलत नहीं होने देगा, इसलिए वो इशिका के बचाव में तुरंत आगे आया और आयशा से बोला, मिस सिंघानिया का मूड खराब है, वो इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहती, तो उनसे कुछ मत पूछो। राघव के आगे नक्श कुछ नहीं बोल पाया। कभी कभी आयशा को लगता था कि उसे नक्श के बजाय अभिमन्यु से शादी करनी चाहिए थी, और अब जब उसे राधिका के मायके साइड के रिलेशन का पता चला था तब उसे यही लगता था कि अगर वो राधिका की बात मान लेती तो उसे नक्श से अच्छा लड़का मिल सकता था, जो अमीर भी होता और उसकी अच्छी पहुंच भी होती। अचानक आयशा की आंखों में राधिका के लिए नफरत के भाव थे। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध ली। आयशा ने नक्श से कहा, जाने दो नक्श, अभिषेका की शादी अभिमन्यु चाचू से हो गई है तो वो इस घर में कभी भी आ सकती है। ऊपर से मिस्टर एंड मिसेस मित्तल भी इसका कुछ ज्यादा ही फेवर कर रहे हैं। आयशा इनडायरेक्टली ये कहना चाहती थी कि इशिका अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रही है। अरमान इशिका को डांटना चाहता था, तभी उसे याद आया कि रेस कोर्स में इशिका ने उसकी जान बचाई थी, तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाया। आयशा को लगा इस मामले में अरमान इशिका को डांटेगा, लेकिन उसे चुप देखकर आयशा ने इशिका से कहा, तुम जानती हो मॉम की तबीयत ठीक नहीं रहती है, कल आ जाना, रात काफी हो गई है, इस वक्त वो तुमसे नहीं मिलना चाहेगी।
उसकी बात सुनकर इशिका ने आयशा के चेहरे की तरफ देखा। आज पहली बार वो आयशा को एक अलग नजरिए से देख रही थी। आयशा का चेहरा आदर्श से मिलता था, कहीं भी उसके चेहरे में मैडम मर्चेंट या राधिका जैसा कोई फीचर नहीं था। इशिका एक अलग ही दुनिया में खोई हुई थी, तो वो बिल्कुल चुप थी। उसकी ये चुप्पी उस वक्त उसके लिए गलत साबित हो रही थी। अरमान से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो आगे आकर बोला, तुम्हें बोल दिया कि मिसेस सिंघानिया की तबीयत ठीक नहीं है, फिर तुम क्यों चुपचाप यहां पर खड़ी अंदर जाने का इंतजार कर रही हो? एक औरत अपने पति की नाजायज औलाद को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर तुम क्यों राधिका जी को तकलीफ देना चाहती हो? अरमान के बीच में इंटरप्ट करने पर राघव ने कहा, तुम इस मामले से दूर रहोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, सच सामने आने पर तुम्हें भी अपने शब्दों पर पछतावा होगा। मुझे किसी तरह का पछतावा नहीं होगा और इस लड़की को मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। आई नो आज इसने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी को बेवजह परेशान करे और मैं इसे ऐसा करने दूं, अरमान ने गुस्से में कहा। आयशा जो चाहती थी वही हो रहा था, उसके चेहरे पर ईविल स्माइल थी। अरमान इस मामले में बीच में कूद पड़ा था और इशिका को गलत साबित करने की आयशा की कोशिश कामयाब होने लगी थी। उन लोगों की बहस के बीच इशिका चुपचाप खड़ी थी, तभी अंदर से हाउस हेल्पर तेज कदमों से चलकर आई। उसे देखकर इशिका के चेहरे पर चमक आ गई थी। वो जल्दी से बोली, क्या मिस्टर सिंघानिया ने मुझे अंदर आने की परमिशन दे दी है? नहीं, वो सोने चली गई हैं, आप किसी और दिन आइएगा, हाउस हेल्पर ने बताया। इशिका के चेहरे पर मायूसी के भाव थे। अरमान उनके रिश्तों को समझ नहीं पा रहा था। आयशा ने उसे यही कहा था कि इशिका और राधिका के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और वो राधिका को बहुत परेशान करती है। अभिमन्यु से शादी होने के बाद वो आयशा को भी तंग करने लगी है, जिस वजह से अरमान के दिल में उसके लिए नफरत पैदा होने लगी थी। कुछ भी साबित करने से ज्यादा इशिका के लिए राधिका की तबीयत थी। उसने जल्दी से पूछा, वो इतनी जल्दी सोने नहीं जाती है, आज कैसे चली गई? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? आयशा ने तुरंत उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और तुम्हें समझ नहीं आता क्या कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती है, इसीलिए उन्होंने बहाना बनाया है। अब जवाब मिल गया है तो निकलो यहां से। इशिका ने आयशा की बात को इग्नोर किया। जिस दिन वसुधा का बर्थडे था उस दिन भी राधिका की तबीयत खराब होने लगी थी। उसने फिर से हाउस हेल्पर से पूछा, बताओ उनकी तबीयत को क्या हुआ है, वो ठीक है ना? हाउस हेल्पर ने गर्दन झुकाकर कहा, वो बिल्कुल ठीक है और इस वक्त डिनर कर रही है। मिस्टर सिंघानिया ने ही मुझे मना किया था कि आपको अंदर ना आने दिया जाए, लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज आप जाकर उन्हें बोल दीजिए ना, इशिका ने काफी पोलाइटली कहा, लेकिन उसकी बातें आयशा और अरमान को गुस्सा दिला रही थीं। अरमान ने तेज आवाज में कहा, तुम क्यों बेवजह परेशान कर रही हो? जब एक बार उन्होंने कह दिया कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती है तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम ये है मिस्टर सिंघानिया कि इसे जानबूझकर मेरी मॉम की तबीयत खराब करनी है, जबकि इसे अच्छे से पता है कि इसके सामने आने पर मॉम की तबीयत खराब हो जाती है, आयशा ने जवाब दिया। इशिका ने फिर से हाउस हेल्पर से बात करनी चाही, लेकिन तभी आदर्श खुद ही बाहर आ गया था। इशिका को वहां देखते ही आदर्श ने कहा, मैंने तुम्हें यहां आने से मना किया था ना, एक अमीर आदमी से तुम्हारी शादी हो गई है तो जाकर उसके साथ रिश्ते निभाओ, यहां आने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस एक बार उनसे बात करने दीजिए, इशिका ने रिक्वेस्टिंग वे में कहा। आदर्श पर इशिका की बातों का कोई असर नहीं हुआ। फिर उसकी नज़र आयशा पर पड़ी तो वो तुरंत अपने चेहरे के भाव नरम करके बोले, आयशा बेटा, तुम यहाँ आई हो तो दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर क्यों नहीं आ रही? मैं बस वेट कर रही थी कि मुझे भी अंदर आने की परमिशन मिल जाए, आयशा ने जानबूझकर इशिका को चिढ़ाने के लिए कहा। वो जानती थी आदर्श का जवाब क्या होने वाला है। उसकी उम्मीद के मुताबिक आदर्श ने जवाब में कहा, ये कैसी बात कर रही हो तुम, ये तुम्हारा ही घर है और तुम्हें अपने घर में आने के लिए किसी भी तरह की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। बोलते हुए आदर्श की नज़र अरमान पर पड़ी। वो अरमान से पहली बार मिल रहा था। उसने हैरानी से पूछा, ये कौन है? ये अरमान सिंघानिया है, दिल्ली से आए हैं, वहाँ की सिंघानिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, आयशा ने बताया। अरमान की पहचान पता चलते ही एक पल के लिए आदर्श के चेहरे के भाव गहरे हो गए थे। वो अतीत की यादों में खो गए थे, जो कि अच्छी तो बिल्कुल नहीं थी। आदर्श ने तुरंत अपने चेहरे के भावों को नॉर्मल करके कहा, काफ़ी टाइम से उधर जाना नहीं हुआ, तुम यहाँ ज़रूर राधिका से मिलने के लिए आए होगे, चलो अंदर चलते हैं। अरमान ने सिर हिलाया और वो सब अंदर जाने लगे। उनके साथ इशिका भी अंदर की तरफ जा रही थी। तभी आदर्श ने उसका हाथ पकड़कर दबाते हुए कहा, तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, मैंने कहा था ना, अब तुम राधिका के सामने नहीं जाओगी। इशिका कोई कमज़ोर या नाजुक लड़की नहीं थी, उसने डिफेंस आर्ट सीखा हुआ था और आज वो सच जानने की नीयत से वहाँ आई थी। आज से पहले उसने आदर्श पर कभी अपना जोर नहीं आजमाया था, लेकिन अब इशिका ने एक झटके में आदर्श के हाथ को खुद के हाथ से अलग किया और सख्ती से बोली, मैंने कहा ना कि आज मुझे मिसेस सिंघानिया से मिलना है, तो मैं उनसे मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगी। उन सब के रोकने के बावजूद इशिका अंदर जा चुकी थी। राधिका की तबीयत खराब ना हो जाए, ये सोचकर सब उनके पीछे आ रहे थे। सबसे ज्यादा गुस्सा अरमान को आ रहा था, क्योंकि उसके चाचू ने उसे यही कहा था कि राधिका का ख्याल रखना है। राधिका उसके चाचू के लिए मायने रखती थी, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। जैसे ही इशिका राधिका के पास पहुंची, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, इशिका बेटा, तुम यहाँ इस वक्त कैसे आई हो, सब ठीक है ना? इशिका को देखते ही राधिका के मायूस चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और ये देखकर अरमान हैरान रह गया। आयशा ने जिस हिसाब से बताया था, उस तरह से तो इशिका को देखकर राधिका की तबीयत खराब हो जानी चाहिए थी, लेकिन उनका चेहरा खिल उठा था। इशिका ने जल्दी से कहा, मुझे माफ कीजिए मिसेस सिंघानिया, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, एक्चुअली मैं यहाँ आपको एक फोटो दिखाने के लिए आई थी और आपसे कुछ पूछना था मुझे। इशिका जानती थी कि अगर बाकी फैमिली उसके पास आ गई तो वो कभी राधिका को वो फोटो नहीं देखने देगी। इशिका ने जल्दी से फोटो राधिका के हाथ में पकड़ा दी थी ताकि वो उसे देख सके। इशिका उम्मीद से राधिका की तरफ देख रही थी। वो जानती थी कि उसने जल्दबाजी में फैसला लिया है, अगर सही तरीके से प्रूफ करना होता तो वो चुपचाप उन दोनों का DNA टेस्ट करवाकर साबित कर सकती थी, लेकिन वो सीधे फोटो दिखाने के लिए आ गई थी क्योंकि उसे इंतजार नहीं हुआ। तब तक बाकी लोग भी वहां पहुंच चुके थे। राधिका ने फोटो देखने के बाद इशिका से मुस्कुराकर पूछा, क्या ये औरत तुम्हारी नानी है इशिका? ये देखने में बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रही है। इशिका को एक पल के लिए लगा कि राधिका बीमारी की वजह से अपनी माँ तक का चेहरा याद नहीं कर पा रही। गौतम ने मामला संभालते हुए आगे आकर कहा, मिसेस सिंघानिया, क्या आप सच में नहीं जानती कि ये औरत कौन है? क्या मुझे जानना चाहिए ये औरत कौन है? राधिका ने हैरानी से पूछा। हाँ जरूर, क्योंकि ये आपकी माँ है, यही मैडम मर्चेंट यानी मिसेस दुर्गा मर्चेंट है, गौतम ने तुरंत बताया। राधिका ने हल्का मुस्कुराकर कहा, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर जरूर हुई है, लेकिन अपनी माँ को मैं ना पहचान पाऊँ ये मुमकिन नहीं है, ये औरत मेरी माँ नहीं है।
जैसे ही राधिका ने ये कहा कि फोटो में मौजूद औरत उनकी माँ नहीं है, इशिका को एक झटका सा लगा। ऐसा लगा कि वो एक हसीन ख्वाब से बाहर आ गई है। तो कौन थी वो औरत जो आखिर इशिका की तरह लग रही थी?